الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے، زہد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زہد کسے کہتے ہیں. یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے زہد و تقویٰ، پرہیزگاری اور دیگر چیزوں میں. تو آج ہم اس کی تعریف بیان کریں گے، بلکہ اس کے متعلق پہلے بزرگان دین کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر اس پر گفتگو کریں گے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، دنیا سے اعراض کرنا یہ نہیں کہ تو غیر لطیف چیز کھائے اور ابا پہنے، بلکہ زہد یہ ہے کہ تو اپنی امیدوں کو چھوٹا اور کم کر دے. یہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول. حضرت ابن جلا رحمت اللہ علیہ فرماتے، زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ ایک زوال پذیر چیز ہے، تاکہ تمہاری نگاہوں میں دنیا حقیر ہو اور تمہارے لیے اس سے اعراض کرنا آسان ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، فقر کی محبت کے ساتھ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کا نام زہد ہے. حضرت عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درہم و دینار ترک کر دینے کا نام زہد ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر اس چیز کو ترک کر دینے کا نام زہد ہے جو اللہ تعالی کی طرف مشغولیت سے روکے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بغض کا نام زہد ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زہد تین طرح کا ہے. نمبر ایک، ترک حرام، فرمایا یہ عوام کا زہد ہے. نمبر دو، حلال چیزوں میں سے فضول چیزوں کا ترک کرنا، یہ خاص لوگوں کا زہد. نمبر تین، ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھڑا کر اپنی طرف مشغول رکھتی ہیں، فرمایا یہ عارفین کا زہد. یہ بزرگان دین نے زہد کی تعریف کی ہے. اب آئیے ذرا سا غور کریں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، جن کا ہم نے سب سے پہلے ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا، فرمایا دنیا کی اغراض یعنی مقاصد کرنا، غیر لطیف چیز نہ کھانا، ابا پہننا، فرمایا یہ زہد نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ اپنی امیدوں کو چھوٹا کر دے، کم کر دے. مطلب کیا ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ امیدیں لگاتا ہے، مال و دولت، عہدہ، منصب، جائیداد، دیگر چیزیں، ہر چیز کی امید ہے نا، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے، مجھے اتنا مال مل جائے، مجھے اتنی دولت مل جائے، مجھے اتنی جائیداد مل جائے، یہ تمام چیزیں یعنی یہ امیدیں لگاتا ہے. فرمایا زہد یہ نہیں کہ تم ابا پہن لو، زہد یہ نہیں کہ تم کچھ چیزیں کھانے کی چھوڑ دو، غیر لطیف چیزیں چھوڑ دو، زہد یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کو چھوٹا اور کم کر دو، یعنی دنیا تمہاری نظر میں حقیر ہو. روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بان کی چارپائی پر آرام فرمائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر اس بان کے نشان پڑ گئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، सरकार ने पूछा उम्र क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोच रहा हूँ कि दुनियावी बादशाह बड़े बड़े नर्म गुदाज गद्दों पर, रेशमीन चादरों वाले गद्दों पर आराम से सोते हैं, और शहनशाह है कौनो मका इस बान की चारपाई पर इस तरह आराम फरमा है कि उसके निशान आपके जिस्म मुबारक पर पड़ गए। अब सुनिए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। फरमाया, उमर क्या तुम ये नहीं चाहते कि दुनिया उनके लिए हो और आखिरत हमारे लिए हो? गौर कीजिए, दुनिया उनके लिए, आखिरत हमारे लिए हो। अल्लाह ताला को उनको जो कुछ देना था दुनिया में दे दिया, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है, दुनिया हमारे लिए। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते थे कि ये मत समझो दूसरों को देखकर अगयार के ऐशो आराम सुकून को, तमाम चीज़ों को देखकर मत सोचो कि अल्लाह ने उनको कितना सुकून दे दिया, अल्लाह ने उनको कितनी नेमतें दे दी। क्योंकि हकीकत यह कि आज इंसान यही सोचता है। एक साहब ने सवाल किया, जी इस दुनिया में काफिर तो बहुत आराम से हैं, बड़े सुकून से हैं, जबकि मुसलमान परेशान है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ में इसका जवाब मौजूद है। फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आप देखें, कैदखाने में पाबंदी होती है ना, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, ये सारी पाबंदियाँ हैं ना। और जन्नत में किसी किस्म की पाबंदी नहीं। अब आप इस लिहाज से देख लें, काफिरों के लिए दुनिया में कोई पाबंदी नहीं है, हराम हलाल की उनको कोई तमीज़ नहीं है, उन पर कोई पाबंदी नहीं। शराब पीते हैं, जिनाकारी करते हैं, धोखा देते हैं, हर गलत काम करते हैं, कोई पाबंदी नहीं, तो उनके लिए तो जन्नत है। मुसलमानों के लिए पाबंदी है, हराम की तरफ नहीं जाना है, हराम का लुकमा नहीं खाना है, हराम की तरफ नहीं देखना है, हराम रास्ते की तरफ नहीं जाना है, धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, गीबत चुगली नहीं खानी है, वादा खिलाफी नहीं करनी है, अमानत में खयानत नहीं करनी है। ये सारी पाबंदियां मुसलमानों के लिए क्यों? इसलिए अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। और फिर एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही, जो लोग ये कहते हैं ना कि जी काफिर आराम से हैं, उनके लिए बड़ा सुकून है, मुसलमान परेशान है, बड़ी प्यारी बात कही जो सुनने और याद रखने के काबिल। उन्होंने कहा, देखो जानवरों पर कोई पाबंदी नहीं होती, जो बेअकल है ना, जिनके पास अकल नहीं है, जो हैवान नातिक नहीं है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। आप देखें, जानवरों पर कोई पाबंदी है कि शराब नहीं पी सकते? क्या उन पर जिना की, झूठ की, गीबत की और दीगर चीज़ों की पाबंदी है? जानवर है, बेअकल है। पाबंदी तो साहिब अकल पर होती है, पाबंदी तो समझदार पर होती है, पाबंदी तो साहिब फहमो फिरासत पर होती है। तो हमें तो ये सोचना चाहिए, उन पर इसीलिए पाबंदी नहीं है कि वो कुछ जानते ही नहीं, वो कुछ मानते ही नहीं, वो तो बिल्कुल जानवरों की तरह। कुरान ने कहा, उलाइका कल अनाम बलहुम अदल्लु व उलाइका हुमुल गाफिलून। ये तो जानवरों की तरह, चौपायों की तरह है। कुरान की आयत मौजूद है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। उनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं, उनके कान हैं मगर वो सुनते नहीं। कौन है वो? उलाइका कल अनाम बलहुम अदल्लु व उलाइका हुमुल गाफिलून। वो तो चौपायों की तरह हैं बल्कि बहुत ज़्यादा गुमराही में। आप देखें, तो अगर पाबंदी लगी है तो हमारे फ़ायदे के लिए, अगर पाबंदी लगी है तो हमें इंसान बनाने के लिए, अगर पाबंदी लगी है तो इंसान को इंसानियत का मकाम दिलाने के लिए। तो ये हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर पाबंदी है, उन पर पाबंदी नहीं। और ये एक चीज़ आप नोट कर लें कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उनको चैन सुकून नहीं, कल्बी सुकून उनको हासिल नहीं, खुशी उनको दायमी हासिल नहीं, जबकि इन तमाम पाबंदियों में जो मुसलमान रहता है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी करता है, यानी जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया वो करता है, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम कर दिया, मना कर दिया, वो उनसे रुक जाता है। इसी में सुकून है, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में अमन है, और इसी में कल्बी सुकून उसे मैसर आता है। तो अदुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, तो ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए ये जन्नत है। अब आइए आगे चलें। हजरत इब्ने जला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहूद ये है कि तू दुनिया की तरफ देखे तो इस तरह देखे कि ये एक जवाल पजीर चीज है, ताकि दुनिया तुम्हारी निगाहों में हकीर हो, तुम उससे एराज करो। ये हकीकत है कि जो चीज निगाह से उतर जाए, दिल से उतर जाए, तो फिर इंसान उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, और जो चीज़ आपके दिल में उतर जाए, जिसको आप पसंद करें, जिसको आप अच्छी निगाह से देखें, तो आप उसे हासिल करने की कोशिश करें। तो हजरत इब्ने जला यही फरमा रहे हैं कि दुनिया की तरफ देखो, लेकिन दलील हकीर शय समझ कर, ताकि तुम्हारी तवज्जो उस पर ना हो, तुम उसके हुसूल की कोशिश ही ना करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फ़कर की मोहब्बत, इसके साथ अल्लाह ताला पर भरोसा करने का नाम जहुद है। यानी फ़कर फाका आदमी इख्तियार करे और उसके साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे। अल्लाह तबारक व ताला जो उसकी ज़ात पर भरोसा रखता है, खालिक़े कायनात उसके तवक्कुल को, उसके भरोसे को, उसकी उम्मीद को ज़ाया नहीं फरमाता। बेशुमार नेमतें और उसके साथ रहमतें और उसके साथ बरकतें अता फरमा देता है। हजरत अब्दुल वाहिद इब्ने जैद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, दिरहम और दीनार को तर्क कर देने का नाम जहुद। हम तो चाहते हैं माल दौलत हमें मिले, पैसा मिले, दिरहम और दीनार मिले। हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही तशरीफ फरमा है, बादशाह वक्त की तरफ से 1000 दीनार या अशरफियाँ जो भी उस ज़माने में थी उसकी थैली पेश की गई। ये बादशाह वक्त ने 1000 दीनार भेजे हैं, आपने अपने सामने रखी। एक दरवेश वहाँ मौजूद था, उसने देखा, कहा, बाबा निज़ामुद्दीन, बादशाह ने जो नजराना भेजा है, आधा तुम्हारा है आधा मेरा है। यानी ये आधी अशरफियाँ या दीनार जो भी हैं, अब 1000 भेजी थी ना, तो उसके कहने का मतलब ये था कि 500 आप ले लें और 500 मुझे दे दें। अब सुने सुल्तानुल मशाइख का जवाब, फरमाया, बाबा आधा आधा नहीं, ये सब तेरा है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पूरी थैली उठाकर उसी वक्त आपने दरवेश को दे दी। ये है जहुद, ये है जहुद। हजरत अब्दुल वाहिद इब्ने जैद यही फरमा रहे, दिरहम और दीनार को तर्क कर देने का नाम जहुद है। माल और दौलत को तर्क कर दिया, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था, अल्लाह ताला ने फिर भेज दिया। लंगर पक रहा है, फ़ुकरा मसाकीन गुरबा आ रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हजरत के ख़जाने में, उनके लंगर में कोई कमी नहीं है। हजरत हसन बसरी फरमाते, दुनिया और दुनिया की चीज़ों से बुग्स का नाम जहुद है, यानी उनसे नफरत हो, दुनिया से और दुनिया की चीज़ों से। और जब नफरत होगी तो इंसान उनके हुसूल की कोशिश नहीं करे, जब मोहब्बत होगी तभी वो कोशिश करे। इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, जहुद 3 तरह का है। अव्वल तर्क हराम, ये अवाम का जहुद है, यानी जो चीज़ें हराम है ना, बस उनसे बच गए, बाकी हलाल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कर रहे। फरमाए ये अवाम का जहुद। नंबर 2, हलाल चीज़ों में से फजूल चीज़ों का तर्क कर देना, ये खास लोगों का जहुद। अब आप देखें ना, हलाल चीज़ें कितनी हैं, लेकिन उसमें फजूल चीज़ें भी बहुत, यानी बहुत सा खाना जो हम खा लेते हैं हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ लवाजमात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम खाने के अलावा भी खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं, तो कहा उन फजूल चीज़ों का तर्क कर देना, ये खास लोगों का जहुद। और इससे बढ़कर 3री किस्म, उन तमाम चीज़ों का तर्क कर देना जो बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से छुड़ा कर अपनी तरफ मशगूल रखे। फरमाया ये आरिफीन का जुहद, आरिफीन का बड़ा मकाम है। वो ये नहीं देखते कि ये सिर्फ हलाल है या ये सिर्फ हराम है तो हमने इसको छोड़ दिया, या फजूल है तो इसे छोड़ दिया। नहीं, सिर्फ हराम या फजूल की वजह से नहीं, हर उस चीज को तर्क कर दिया जो अल्लाह की तरफ जाने से रोक दे, हाँ वो कोई भी चीज हो, उन्होंने उसको तर्क कर दिया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते ये आरिफीन का जुहद। तब तो आपने समझ लिया कि जुहद क्या है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन बुजुर्गान दीन के सदके में, उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के सदके में हमें जहुद अता फरमाए। बल्कि जहुद तो बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला उसका एक अदना सा जर्रा हमें अता फरमा दे तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब। असल जहुद इन्हीं बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन का था, जिन्होंने न सिर्फ हराम को तर्क किया, न सिर्फ फजूल चीजों को तर्क किया, बल्कि हर उस चीज को तर्क कर दिया जो अल्लाह की तरफ जाने से रोके, जो अल्लाह के जिक्र में मशगूलियत से रोके, जो खुशू और खुजू से रोके, जो उसके कुर्ब से रोके, हर उस चीज को तर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया, और जब अल्लाह का कुर्ब उनको हासिल हो गया, फिर उनका मकाम यह हो गया कि जो उनकी महफिल में बैठ गया वो भी रब से करीब हो गया, जिसने उनके चेहरे को देख लिया वो भी रब से करीब हो गया, जिसने उनके इर्शादात पर अमल कर लिया वो भी रब से करीब हो गया, जो उनके मज़ार पर पहुंच गया वो भी रब से करीब। ये है इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की शान। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की मोहब्बत और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहि सलातो सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।